ಪೋವನಾದಿ ಗಮನಂ ಅತ್ವಾ ಮೃಗಂ ಕಾಂಚನಂ ವೈದೇಹಿ ಹರಣಂ ಜಟಾಯೋ ಮರಣಂ ಸುಗ್ರೀವ ಸಂಭಾಷಣಂ ವಾಲಿ ನಿಗ್ರಹಣಂ ವಾಲಿ ನಿಗ್ರಹಣಂ ಸಮುದ್ರ ತರಣಂ ಲಂಕಾಪುರಿ ದಹನಂ ಪಶ್ಚಾತ್ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಹನನಂ ಏತದ್ಧಿರಾಮಾಯಣಂ ಲೋಕಾಭಿರಮಂ ರಣರಂಗಧೀರಂ ರಾಜೀವನೇತ್ರಂ ರಘುವಂಶನಾಥಂ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪಂ ಕರುಣಾಕರಂ ತಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ. ರಾಮೋ ರಾಜಮಣಿ ಸದಾ ವಿಜಯತೆ ರಾಮಂ ರಮೇಶಂ ಭಜೆ ರಾಮೇಣಾಭಿಯ ತಾನಿಶಾ ಚರಚಮೋ ರಾಮಾಯ ತಸ್ಮೈನ್ ಮಹಾ ರಾಮನಾಸ್ತಿ ಪರಾಯಣಂ ಪರತರಂ ರಾಮ ಸದಾ ಸೋಸ್ಮ್ಯಂ ರಾಮೇ ಚಿತ್ತಲಯ ಸದಾ ಭವತು ಮೇ ಓ ರಾಮ ಮಾಂ ಉದ್ಧರ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ. ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋ ಖಾಲಿ ಸ್ಮರಣ ಕರೆ ಹಮ್ ತೋ ಇನ್ಕೆ ಸ್ಮರಣ ಸೆ ಹಮ್ ಪವಿತ್ರ ಹೋ ಜಾತೆ ಹೈ. ಹಮಾರೆ ಮೇ ಅನೇಕ ದೋಷ ಹೈ ಕಿಂತು ಇನ್ಕೆ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರ ಸೆ ಹಮಾರ ಉದ್ಧಾರ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ. ಲಾಖೋ ಕರೋಡೋ ಜೀವ ರಾಮಾಯಣ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರ್ಕೆ ಖಾಸ್ ಕರ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮೇ ತರ್ ಗಏ ಹೈ ಔರ್ ತರ್ ರಹೇ ಹೈ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜೀ ಕಾ ಉದಾಹರಣ ಹಮಾರೆ ಸಾಮನೆ ಹೈ ಕೆ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚೋರ್ ಡಾಕೂ ರೋಜ್ ಅನೇಕ ಜೀವೋ ಕೋ ಮಾರನೆ ವಾಲಾ ಲೂಟನೆ ವಾಲಾ ಭೀ ಇತನಾ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಉಲ್ಟಾ ನಾಮ ಲೇಕರ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ಯೇ ರಾಮ ನಾಮ ಭೀ ಬೋಲ್ ನಹೀ ಸಕ್ತೆ ಥೆ, ಯೇ ಮರಾ ಮರಾ ಬೋಲ್ತೆ. ಫಿರ್ ಭೀ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಭಕ್ತ ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇ ಆಜ್ ಹಮ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿರಂತರ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಇನ್ಕಿ ಮೂರ್ತಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಶಾಂತ ಹೋತಿ ಹೈ. ಆತ್ಮಾ ರಾಮಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಕೈವಲ್ಯ ಪತಯೇ ನಮಃ. ಆತ್ಮಾ ರಾಮಾಯ ಯೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್, ಇನ್ಕೋ ಕಿಸಿ ಕಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ನಹೀ ಹೈ. ಇನ್ಕೋ ಜೊ ಆತ್ಮಾ ಮೇ ಸಂತುಷ್ಟ ಜೀವ ಹೋತೆ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ತರಹ, ಉನ್ಕೋ ಅಚ್ಛಾ ಬುರಾ ಕುಛ ನಹೀ ಹೋತಾ ಹೈ. ದೂಸರೆ ದಿನ ರಾಜಾ ಹೋನೆ ವಾಲೆ ಥೆ, ಉಸ್ಕಿ ಜಗಹ ಉನ್ಕೋ ಜಂಗಲ್ ಮೇ ಜಾನಾ ಪಡಾ. ತೋ ದೋನೋ ಭೀ ಏಕ್ ಹೀ ಬಾತ್, ये इनसे हमने सीखना, हमारा जीवन सुख में है जब तक तो हम राम राम कर लें, किंतु दुख में ये राम नाम की कसौटी होती है। प्लीज, इनका जो अवतार है ये मनुष्य को सिखाने के लिए, और इनके जीवनी में से अनेक अच्छे गुण हम पा सकते हैं। राजा बनने वाले थे और जंगल में क्यों जाना हुआ, इसकी जड़ ईर्ष्या में है। कैसे वैसे भगवान की इच्छा से कैकेयी की दासी मंथरा के मन में ये जलने लगी है, और कैसे कैकेयी तो बड़ा आनंद हुआ जब मंथरा ने समाचार दिए कि कल राजा राम राजा होने वाले हैं, तो कैकेयी तो बड़ा आनंद हुआ इसको। इसने इसके गले में हीरे का हार था वो निकाल के मंथरा को दे दिया, किंतु मंथरा के मन में और कोई बात भगवान की कृपा से चल रही थी। इसने हार फेंक दिया और कैकेयी को कोसा के तेरे को अकल नहीं है, तेरा भरत और तू दोनों भी उसके गुलाम हो जाओगे, वगैरह वगैरह। ये जलने के हिसाब से ऐसी भाषा मंथरा से निकलती। हम भी, हमारा जन्म एनवीएस होता है, हम एक दूसरे की ईर्ष्या करते हैं। एक दूसरे की ईर्ष्या करने से कोई जीव से हम प्यार नहीं करते। जहां तक हमारा कोई स्वार्थ हो, उसे किसी से मिलाना हो, तो हम अच्छी तरह से रहते हैं, नहीं तो जीव को जीव जानकर हम कभी अच्छी तरह से नहीं रहते हैं। हमारे शरीर की रचना है कि ये जलन हमेशा इसमें होती ही है, और हमारी आंखें जो है ये हमेशा औरों को देखती है। हम कितना भी प्रयत्न करें तो हमारे को देख नहीं सकते हम, तो ये शरीर की रचना होने से हम हमेशा दूसरों की तरफ जब देखते हैं तो इनके इनके जो दोष हैं इनकी ही चिंता करते हैं। और शास्त्र हमें सिखाते हैं कि अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आशु मुक्त्वा सेवा कथा रसम अहो नितराम पिबत्वम। बड़ी अच्छी दो लाइनें हैं यहां कहा है कि अन्यस्य दूसरे लोगों के दोष एंड गुण, इनके डिफेक्ट्स दुर्गुण और अच्छे गुण, इनकी चिंता छोड़ दो। अन्यस्य गुण दोषनम चिंतनम आशु जल्दी छोड़ दो, मुक्त्वा, और ये छोड़कर क्या करो, सेवा कथा, भगवान की सेवा करिए। हमारे घर में हमारी प्रणाली है कि छोटी मूर्ति रखने हैं, हम पिक्चर रखते हैं भगवान का, और छोटी पूजा हमारे घर में भी होती है। ये शास्त्रों ने कहा है कि सेवा करते रहो, राम में भगवान राम में कृष्ण में मन होगा तो दूसरों के गुण और दोष हम देखने बंद कर देंगे। इसमें समय का व्यय हम कभी नहीं करेंगे। ये बात जब हमें समझ जाती है तो ये सेवा कथा का रस हम हमेशा पीने लगते हैं, किंतु फिर भी सेवा कथा हमारे जीवन में ना हो या कम हो जाए या करके हम शांति से बाहर निकल आए तो फिर हमारे मस्तिष्क पर ये ईर्ष्या सवार हो जाती। और इसका कारण है क्योंकि हमारा जो शरीर है इसमें तीन दोष, इसको त्रिदोष कहते हैं। ये त्रिदोष के हिसाब से ये तीन दोष कहलाए गए हैं। ये तीन हमेशा हमारे को तंग करते रहते हैं, और ये वात पित्त और कफ। कुलशेखर राजा ने बड़ा अच्छा कहा है हमें कि कृष्ण त्वदीय पाद पंजर पंकज पंजरंतम मध्येव विशतु मे मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैहि कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। ये कहा है राजा ने बड़ा अच्छा कि प्राण प्रयाण समय यदि मुझे नाम तेरा याद ना आए, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो हमारा कंठ कफ से बंद हो जाता है और हम बोलना भी चाहे तो हम बोल नहीं सकते। तो राजा प्रार्थना करते हैं भगवान को कि सारा जीवन तो मैं ले सकूं, मेरी तबीयत अच्छी है, जब तक ज्यादा से ज्यादा समय इसमें जाए और मैं कुछ न करूं, किंतु प्राण प्रयाण के समय तेरी कृपा के बिना ये कंठ बंद हो जाएगा, इसमें वायु आ जाता है, कफ आ जाता है, गर्मी शरीर में बढ़ जाती है, इसको पित्त कहती। तो मैं ये तेरा नाम कैसे लूं? तो इसे ऐसे ही निश्चय करते हैं जीव। हमें राजा समझाते हैं कि जब तक आपके कंठ में कफ कम है, जब तक आपका कंठ खुला है, तब तक दिल से भगवान का नाम ले लीजिए, नहीं तो पता नहीं अंत में हमें स्मरण में आता है या नहीं। और ये जो शरीर में जो गर्मी होती है, ये तीन दोष से, पित्त से हमारे गर्मी शरीर में गर्मी होती है। कोई बच्चा बहुत देर से बोल रहा है, ये शरीर में हमारे सात घटक हैं। इसमें देखिए, पहला तो हम जब खुराक लेते हैं हमारी, तो इसका रस होता है, मांस रुधिर मेद मज्जा अस्थि धातव, ये छह और हैं। पहले रस है शरीर, जो हम जो खाना खाते हैं, हम प्रसाद जो लेते हैं, इसका रस होता है। और ये रस उबलता है क्योंकि हमारे शरीर में गर्मी। प्लीज, कोई बच्चा बोल रहा है, इनको बाहर निकालिए। शरीर में पित्त होने से गर्मी रहती है, और गर्मी भी बिल्कुल आसानी से हम सह सके इतनी ही गर्मी होती। शरीर गर्म होता है, ठंडा नहीं होता है, किंतु मृत्यु से पहले ये गर्मी बहुत बढ़ जाती है, और आत्मा जब शरीर छोड़कर निकल जाता है तो शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, वो आइस के जैसा हो जाता है। तो ये गर्मी से ये धातु जो है हमारे, ये सात धातु कहलाते हैं, इसको सेवन एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी। रस है, फिर मांस रुधिर ब्लड, रस मांस रुधिर, मेद फैट, मज्जा मैरो बोन में जो हड्डी में जो द्रव्य आता है, और अस्थि, और धातु है शुक्र। ये सात धातु हमारे शरीर में है, ये रस से सब पैदा होती। हम मांस तो खाते नहीं है, फिर भी हमारे शरीर में मांस है। हम फैट भी खाते नहीं है, चर्बी भी हम खाते नहीं है, फिर भी हमारे शरीर में चर्बी है। तो ये सब रस का परिवर्तन, और ये परिवर्तन का कारण गर्मी है। और लोगों की जो हम ईर्ष्या करते हैं, इसका भी कारण जलन है। इसको हम हिंदी में जलन कहते हैं कि मैं जलता हूं। दुर्योधन जलता था, रावण जलता था, शिशुपाल जलता था, जरासंध जलता था, पूतना जलती थी, तृणावर्त जलता था, अघासुर जलता था, ये सब जलने वाले। और जितने भी जलने वाले हैं, इनका नाश हुआ है, ये हमने देखा है। रावण को तो 10 मस्तक थे, हमारे तो एक ही है, तो उसके 10 भी उड़ा दिए गए। ये देखिए, ये परिणाम है जलन का, कैसे वैसे करके। और ये ईर्ष्या की जो जलन है, इसको हम समझ से दूर कर दें, नहीं तो ये हमारा स्वभाव है। मैंने कहा आपको कि हमारी आंखें दूसरों को ही देखती रहती है, किंतु ये जलना हम बंद करें तो बर्बादी बंद हो जाए। और ज्यादा जलन हो तो जो पकने की क्रिया है, रस से जो मांस होता है, मांस पककर जो ब्लड होता है, ब्लड पक्कर जो मेद फैट होती है, मेद पक्कर मज्जा होती है, और मज्जा पक्कर हड्डी होती है, और हड्डी पक्कर धातु होती है। ये सात धातु के प्रमाण में कम ज्यादा हो जाता है, ये जीवन से सीखना है हमें। जलते रहें वो जला हुआ ही पता होता है। हमेशा दूसरों की ईर्ष्या करना, इसे हम हमारी तंदुरुस्ती खो बैठते हैं। ये हमने राम ने सिखाया कि भाई ये जो जलन जो है ये दूर कर दीजिए, राज्य मेरा है, राम राज्य है, मेरा ही यहां कुछ सब चलता है और किसी का चलेगा नहीं, और कोई चलाना चाहेगा तो उसकी बर्बादी हो जाएगी। ये हमने सीखा है इसे, और इसे हमने क्या किया है कि शास्त्रों का आधार लिया है। शास्त्रों को रोज हम सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं, रामायण को सुनते हैं, महाभारत देखते हैं, बहुत से वीडियोज हैं वो भी देखते रहते हैं। क्यों? कि हमारे में ये जो जलन है ये निकल जाए, नहीं तो जो मंत्रा ने बर्बादी की, जो रावण ने खुद की बर्बादी की, दुर्योधन ने खुद की बर्बादी की, ये सब हमारे सामने, और ऐसी ही बर्बादी हमें करनी है तो इन बातों का आधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने बर्बादी का ही रास्ता लेना है उसने जलते ही रहना है। और बहुत बड़ी बड़ी जलन हमारी भगवान के बारे में होती है कि भाई तू क्यों बड़ा, मैं क्यों बड़ा नहीं, ये बात हमारे को हमेशा जलाती है। प्लीज कैसे वैसे करें, प्रभुपाद की दया हमारे पर है, इन्होंने अच्छे बड़े बड़े सुंदर मंदिर बना के रखे हैं, डिवोटीज आते हैं, भक्त रहते हैं, ये हमेशा आपके भले के लिए प्रयत्न करते हैं, और कैसे वैसे करके और करुणा करके सीखते जाइए। और जीवों पर हमने दया करनी है, जलना नहीं है। यदि आप जलने लगो ज्यादा तो ये जो सात धातु का जो प्रमाण हमारे शरीर में है वो कम ज्यादा हो जाता है, और कम ज्यादा जब हो जाता है तो और दवाइयां इस पर ज्यादा काम नहीं करती, ये हमने जानना है। दवाई एक ही काम करती है, और राम का नाम, ये रामबाण औषधि है। आपको कुछ भी हो जाए शरीर में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। ज्यादा दवाओं की तरफ न भागे हम, और राम नाम की दवा लेते रहें तो उसमें भी आराम रहता है। शरीर है हमेशा, इसको ये डीके, ये हमेशा इसका नाश होता रहता है। शरीर की व्याख्या ही यही है कि शीर्यते इति शरीर, इसका नाश होता है इसलिए इसको शरीर कहते हैं। और भगवान के शरीर नहीं होते, भगवान का विग्रह होता है क्योंकि इसका नाश नहीं है। और यदि नाश न करना हो तो हमने जानबूझकर और जल्दी से जल्दी भगवान का आधार लेना होगा, नहीं तो ये सात धातु जो है हमारे शरीर में ये कम ज्यादा हो जाएंगे। और यदि ब्लड कम ज्यादा हो तो प्रेशर हो जाता है, मांस कम ज्यादा हो जाए तो हड्डी सूखने लगती है, शरीर को पोषण मिलता नहीं है, इसका प्रमाण चाहिए। और ये प्रमाण में न रहे तो हमें अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं, ईर्ष्या करने से हम रोगी हो जाते हैं। ये बात जब हम समझ जाते हैं तो हम ये दुर्गुण से हमेशा दूर रहते हैं। और यही रामचंद्र जी ने सिखाया है कि भी कैसे वैसे करके और हमारी कृपा ले लो, हम करुणा करम, हम करुणामय हैं, दया करने वाले हैं, भगवान के सभी जीव अंश है, और इनको ये कभी नहीं होता कि ये जीव ऐसा हुआ हैरान हो जाए। दुर्योधन मारा जाए ये कृष्ण भगवान को बड़ी इच्छा थी, रावण खत्म हो जाए ये राम भगवान को बड़ी इच्छा थी, किंतु फिर भी एक्चुअली जब ये मरने लगे तो राम को भी दुख हुआ और कृष्ण को भी दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया है, इनको इतना तो इन बुरा नहीं किया था इन्होंने कि इनको खत्म कर दिया जाए। किंतु जहां अधर्म को खत्म न करें तब तक धर्म की स्थापना होती नहीं है, और जब धर्म की स्थापना हो गई तो इन्होंने खुद की लीलाएं जो थी वो यहां से पूरी कर ली थी। और इनके साथ जो पार्षद आए थे ये भी इनके साथ चले गए थे। ये राम के जीवन से हमने सीखा है, और जब ये सीखते हैं हम तो इससे कैसे दूर रहा जाए ये श्रीमद् भागवतम में बड़ा अच्छा कहा गया है। देखिए हमारे साथ बोलिए, बड़ा अच्छा श्लोक है, पांचवें स्कंद में है और दसवें अध्याय में है और नौवां श्लोक है। देखिए बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तो भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतात् अधोक्षजे आविष्यतां नो मतिर अपि अहेतुकी। ये सारी पृथ्वी का राज इसके पास था और सैन्य भी इसका बहुत बड़ा था, तो बहुत बड़ा सैन्य लेकर एक बार ये जंगल में घूमने के लिए निकला कि कहीं कोई मेरे विरुद्ध कुछ करें तो मैं इसको हरा दूं। ऐसे करके बड़ी आर्मी साथ लेकर और ये जंगल में निकला, और ये सम्राट था, राजा ही नहीं कि सारे सब गोले का राजा था, तो अत्यंत शक्तिमान था और कुछ भी कर सकता था। और ये जंगल में ये वशिष्ठ ऋषि का मेहमान होकर गया, और वशिष्ठ ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं, वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं। और हमारे जो कुटुंब है अनेक भारतीय कुटुंब, इसमें ये गोत्र बहुत प्रख्यात है, वशिष्ठ गोत्र। हमारे ऐसे गोत्र, हमारी जो फैमिलियां हैं ये सब ब्रह्मा से कनेक्टेड हैं, इसको परंपरा कहते हैं। हमारी फैमिलियां ही आती है, और जिनको गोत्र पता नहीं है या है नहीं पश्चिम के देशों में यहां भी, तो उनको प्रभुपाद जी ने कश्यप गोत्र दिया है, और कश्यप भी ब्रह्मा का पुत्र है। ऐसे जो गोत्र हैं इसे हमारी महानता का पता चलता है। आप भी सोच लीजिए आपका गोत्र कौन सा है। तो ये वशिष्ठ ब्रह्मर्षि का बड़ा आश्रम जंगल में था, और ये आनंद से रहते थे। यत्र द्विजा गावो, हिरण्यकशिपु ने जब हिरण्यक्ष को इसके भाई को वराह भगवान ने मार दिया था, तो इसने हुक्म दिया कि यहां जहां जहां ब्राह्मण और गाय और वर्णाश्रम जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये व्यवस्था होगी, और जहां यज्ञ होते होंगे विष्णु की आराधना के लिए उनको सबको जला दो, संदीपयत। ये दुष्टों का काम है कि जहां जहां ब्राह्मण का वास होता है, द्विज जहां जहां काऊ प्रोटेक्शन है, गायों का संरक्षण होता है, वहां वहां वैदिक संस्कृति फैलती है और सुख समृद्धि हमेशा बढ़ती रहती है। तो इसका नाश करने में यह हिरण्यकशिपु को बड़ा आनंद आता था। वैसे ही ये विश्वामित्र भी ये ब्रह्मर्षि के पास पहुंच गया, और राजा होने के नाते अभिमानी बहुत था कि मेरे जैसा शक्तिमान कोई नहीं है। फिर भी ब्रह्मर्षि थे, तो ऋषि तो राजा से भी बड़े होते हैं, तो उनको जाकर इसने प्रणाम किया और आनंद से बातचीत की। वशिष्ठ भी बहुत राजी हो गए कि भाई राजा आए हैं इतना बड़ा सैन्य लेकर, आज भाग्य हमारे आश्रम में पधारे हैं, तो आपकी क्या सेवा करें। ऐसे करके जल और बैठने के लिए जगह दी और पूछा कि भाई कैसे चल रहा है। तो दोनों की बड़ी अच्छी बातें हुई। बाद में वशिष्ठ जी ने कहा कि आपके साथ बहुत बड़ा सैन्य है, तो आपकी कुछ न कुछ सेवा हमें करनी चाहिए। हम तो ब्राह्मण लोग हैं, आप तो राजा लोग हो, हम क्या सेवा करें? किंतु आज आप सब प्रसाद लेकर यहां से जाइए। तो वशिष्ठ जी के पास एक सुरभि नाम की गाय थी और ये काम धेनु थी, इसे जो भी कुछ मांगा जाए ये सब मिल जाता था। तो वशिष्ठ जी की यहां और तो कोई व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने विश्वामित्र के सामने ही ये सुरभि को बुला लिया और कहा कि भाई ये सैन्य के लिए और राजा के लिए बड़ा अच्छा भोजन बनाना है, और भोजन तैयार हो जाए तो जल्दी इनको पिरोस दो। गाय तो काम धेनु ही थी, उसमें से अनेक पकवान निकलने लगे, चांदी की थालियों में प्लेट में सब पिरोसा गया और राजा के सैन्य खुद ये बड़े संतोष शांति से सबको प्रसाद मिल गया, बहुत अच्छी सेवा हो गई। वशिष्ठ ऋषि बहुत राजी हो गए, किंतु विश्वामित्र जलने लगा। ये देखिए बात, उसको ऐसा हुआ कि ब्राह्मण इतना प्रसाद कैसे निकाल सकता है गाय से। ये देखिए बात, उसको ऐसा हुआ कि ब्राह्मण इतना प्रसाद कैसे निकाल सकता है गाय से। तो हो न हो ये गाय तो राजा की मालिकी की चाहिए, क्योंकि अच्छी बात जो होती है वो राजा की मालिकी की होती है। तो ऐसा करके इसने बड़ा आनंद हुआ, इसने थैंक यू कहने के बदले जी को कहा कि भाई आप कुछ भी करें किंतु एक गाय मुझे दे दें, क्योंकि तो राजा का हक है। वशिष्ठ जी के पास अनेक सालों से ये गाय थी और ये भगवान के महान भक्त थे, इनके प्रताप से ये गाय सब कुछ दे सकती थी। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई तुम और कुछ मांगो, हमारे जी गाय न मांगो। विश्वामित्र मानता नहीं था, गाय नहीं दोगे तो चलेगा नहीं, मेरे को कोई ना नहीं कहता है कभी, और आप कैसे ना बोलते हो, ऐसे करके गुस्से हो गया। क्रोध, मटेरियल चीजें जब हम प्राप्त करना चाहते हैं और न मिले तो क्रोध आ जाता है। जरासंध को भगवान कृष्ण को हराना था और मथुरा का राज्य ले लेना था, यह नहीं मिला तो ये 17 बार उसने चढ़ाई कर दी। ये हमने देखा है, ये जलने का परिणाम है, और ये मटेरियल चीजों के पीछे भागने की ये रीत है कि हमें संतोष बिल्कुल नहीं होता है। वैसे ही विश्वामित्र की दशा थी। अब विश्वामित्र ने यह सोचा कि मैं राजा हूं, मैं इसे गाय ले जाऊं, ये क्या करने वाला है। तो गाय को पकड़ के और ये घसीटने लगा विश्वामित्र। तो वशिष्ठ जी बहुत शक्तिमान थे, फिर भी कुछ बोले नहीं और खड़े रहे देखते। तो ये सुरभि विश्वामित्र के पास से छूटकर और वशिष्ठ के पास आई और पूछा कि मेरा क्या गुनाह हुआ है कि आज मुझे आप ये क्रूर के हाथ में दे रहे हो। फिर उन्होंने कहा भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो कर क्यों नहीं सकते? बोले आप इतना ही कहो मुझे कि तू यहां रह जा तो मैं सब कर लूंगी। तो वशिष्ठ ने कहा बड़े से कि भाई तू यहीं रह जा। तो इसने अनेक सैन्य इसमें से निकलने लगे और विश्वामित्र हार गया। खाली विश्वामित्र बचा और इसके लड़कों में से एक ही लड़का बचा। विश्वामित्र इतना तंग आ गया और इतना शर्मिंदा हो गया कि एक ब्रह्मर्षि एक बहुत राजा को, बड़े राजा को हराने जाता है। तो इसके मन में क्रोध बहुत आया कि मैं भी तपस्या करके और ब्रह्मर्षि हो जाऊं। तो ये बहुत कड़ी तपस्या करने के लिए एक पुत्र को राज्य सौंप दिया और ये तपस्या करने के लिए निकल गया। आगे भी बड़ी अच्छी बात है, किंतु हमारे लिए आज इतनी बात उपयोगी कि वो जलने लगा तो उसको राज्य छोड़ना पड़ा। ये है, रावण जलता था तो उसकी बर्बादी हो गई। ये तो रावण के घर में तो बहुत पतिव्रता स्त्री थी मंदोदरी, ये पतिव्रता स्त्री थी, किंतु उसका संतोष नहीं था तो औरों के स्त्रियों की तरफ भागने लगा। ये जलना है, भगवान के शिक्षा, भगवान की जो शिक्षा है इसके विरुद्ध हम काम करते हैं। तो ऐसा करने से हमारी बर्बादी हो जाती है। और ये एनवी प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीवन, हमारे में सभी एनवीएस हैं एक दूसरे के। कैसे वैसे करके क्या करना चाहिए ये श्लोक में बताया है, तो वैसे हम बर्ताव करें तो पॉसिबल है कि हम जरा एनवी कम हो जाए या दब भी जाए या अदृश्य हो जाए। ये बोलिए, खला दी एनवीएस ऑलमोस्ट एवरीवन प्रसीदताम, लेट देम बी पेसिफाइड, ध्यायंता ध्यायंतो, लेट देम कंसीडर, भूतानी ऑल द लिविंग एंटिटीज, शिवम ऑस्पिशियसनेस, मिथा म्यूचुअल, धिया बाय देर इंटेलिजेंस, मन द माइंड च एंड भद्रम कामनेस, भजता लेट इट एक्सपीरियंस अधोक्ष जे इन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हु इज बियॉन्ड द परसेप्शन ऑफ माइंड इंटेलिजेंस एंड सेंसेस, आवेश्यताम लेट इट बी एब्सॉर्ब, न अवर मति इंटेलिजेंस अपि इंडीड अहेतुकी विदाउट एनी मोटिव। ट्रांसलेशन बाय श्री प्रभुपाद, प्रभुपाद की जय। हमारे बात बोलिए प्लीज। मे देर बी गुड फॉर्च्यून थ्रू आउट द यूनिवर्स एंड मे ऑल एनवियस पर्सन्स बी पेसिफाइड, सब ईर्ष्यालु लोग शांत हो जाएं, ये इसमें कहा है। मे ऑल लिविंग एंटिटीज, सब प्राणी बिकम काम, शांत हो जाएं। और कैसे? बाय प्रैक्टिसिंग भक्ति योगा, भक्ति करने से हमारी शांति होती है, ये इसमें बताया है। फॉर बाय एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस, फॉर बाय एक्सेप्टिंग डिवोशनल सर्विस दे विल थिंक ऑफ ईच अदर्स वेलफेयर, देयरफॉर लेट अस ऑल एंगेज इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम ट्रांसेंडेंस लॉर्ड श्री कृष्णा। कि यदि हमने ये एनवी से बाहर निकलना है, ईर्ष्या से बाहर निकलना है, हमारे धातुओं को जलने का बंद करना है, ज्यादा जलाएंगे हम तो मांस नहीं होगा रस से, मांस नहीं होगा तो ब्लड नहीं होगा, ब्लड नहीं होगा तो मेद फैट नहीं होगी, फैट नहीं होगी तो हड्डी नहीं है, हड्डी बंधेगी नहीं, और हड्डी में बनना नहीं होगा तो हड्डी कमजोर हो जाएगी और धातु नहीं होगा। ये चीजें नहीं होगी हमारे शरीर में तो एक्स्ट्रा जलन होगी और उससे हमारी मृत्यु हो जाएगी, ये बर्बादी है। इससे बचना हो तो भक्ति के सिवा और कोई मार्ग नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि भक्ति का इतना महत्व है तो हर जगह, अभी भी भारत में हर गली के कोने में पर छोटा मंदिर होता है और अनेक बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। हमने इंडोनेशिया में देखा है, जावा सुमात्रा में, बाली और जकार्ता में, कि इंडिया में नहीं है इतने अच्छे मंदिर, ये कंट्रीज में है, क्योंकि वैदिक संस्कृति हमेशा सभी जगह फैली हुई थी और इसका नमूना आज भी ये जकार्ता और बाली में मिलता है। यहां बड़े बड़े अच्छे मंदिर हैं। ये मंदिर के अच्छे मकान क्यों बनाते हैं हम? इसीलिए कि जीव ये एनवी से बाहर निकल जाए, थोड़ा मन लग जाए जीवों का कि भई ये सुंदर मंदिर है, डेटी की वर्षिप बड़ी अच्छी है, यहां कोई आकर जरा प्रणाम कर ले तो उतनी देर ये ईर्ष्या से बच जाता है। और इसलिए हम ऐसे जगह पर ज्यादा ज्यादा जमा होते हैं कि जहां हमारा जलना बंद हो जाता है। और जो पुरुष या स्त्री मंदिर से हमेशा संबंध रखती है भगवद गीता भागवतम से, तो उनमें जलना कम हो जाता है तो ओज ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे दुर्गुण निकल जाते हैं और ये जो सात धातु हैं ये बराबर बनने लगते हैं, और कफ पर भी ज्यादा नहीं होता है, कभी गर्मी ज्यादा नहीं होती है, और कभी वात भी ज्यादा नहीं है, विंड भी ज्यादा नहीं होती है। जो विंड जो होती वात, इसके 10 प्रकार होते हैं शरीर में। एक तो प्राणवायु है कि जिसे हम जीते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अपान वायु जो है इसकी गति नीचे के बाजू होती है, और अपान वायु से, माता की अपान वायु से हमारा जन्म होता है, और यदि माता का अपान वायु वीक हो तो सिजेरियन डिलीवरी ऐसा कुछ कहते हैं, ऑपरेशन करके वो बच्चे को निकालते हैं। और जब ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है तो ये नॉर्मल नहीं है इसका जन्म, तो ये मेंटल हो जाते हैं। आजकल की प्रजा ज्यादातर ये मेंटल के स्तर पर है, और इससे बहुत मुसीबत समाज में आ जाती है ये वायु अच्छा काम न करने से। फिर समान वायु होती है, ये हमेशा हमारे नवल प्रदेश में डूंटी के आजू बाजू होती है, और डूंटी के प्रदेश बहुत महत्व का होता है क्योंकि यहां से सारी नसें पैर के तरफ और दिमाग के तरफ जाती है। सारे शरीर में नसों का जो केंद्र है ये नवल का केंद्र है। हमारे जन्म से पहले हम डूंटी से माता के इंटेस्टाइन के साथ जुड़े हुए होते हैं, और जो माता खाती है वो रस से हमारा पोषण होता है 9 महीने तक। ये इतना महत्व का प्रदेश है। और ये समान वायु जो है ये डूंटी के प्रदेश में होता है, तो ये वायु का काम ही ये है कि जो रस तैयार हो खाना खाने के बाद, वो रस का ब्लड करके कुक करता है, ये रस को कुक करते हैं, और इसका ब्लड होता है, इसका रक्त हो जाता है, और ये ब्लड सारे शरीर में आसानी से पहुंचे इसलिए ड्यूटी तक पहुंचाया जाता है। उदान वायु है, ये मृत्यु के बाद हमारा जो हमारी आत्मा है उसको लेकर और सूक्ष्म शरीर, ये उदान वायु के शक्ति से ये बाहर निकलता है, और उदान वायु की शक्ति से ये दूसरे शरीर में दाखिल होता है। मृत्यु से आसानी होनी हो तो ये उदान वायु से होती है। और वैसे ही 5 छोटे वायु हैं, ये सब वायु पर हमारी तंदुरुस्ती का आधार रहता है। तो वायु का प्रमाण बराबर बनना चाहिए और रहना चाहिए। फिर बाइल यानी पित्त होते हैं, इसमें से गर्मी हमें मिलती है, यह आत्मा का आविष्कार है। आत्मा शरीर में होता है तो शरीर गर्म होता है, आत्मा जब छोड़कर चली जाती है तो शरीर हमारा ठंडा हो जाता है। इन तीनों चीजों का इक्विलिब्रियम, समान रखना, ये वायुओं का काम है। और ये वायु में गड़बड़ हमेशा दुर्गुण से होती है, और दुर्गुण हो हमारे पास, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, नूनम इंडीड, बिल्कुल निश्चित, नूनम प्रमत्तः, हम दीवाने हो जाते हैं। और कैसे, ये दुनिया की चीजें मिलाने के लिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब प्रमत्तः। और कुरुते विकर्म, और जब ये दीवानगी होती है मटेरियल चीजों के पीछे, तो हम जाने अनजाने पाप कर्म करके बैठते हैं, और जब पाप कर्म करके बैठते हैं तो हमारी शरीर की संतुलन बिगड़ जाती है और अनेक रोग हमारे को लग जाते हैं। और यही आज की दशा है। ये उपयोग है हमारे शास्त्रों का, ये रामचंद्र जी का हमारे जीवन में महान उपयोग है कि इनको हम याद करें, राम राम राम, तो हमारे में शांति आ जाती है, और पीसफुलनेस हो तो हमारी तबीयत अच्छी रहती है। ये तंदुरुस्ती के साथ इसका संबंध है। और इसलिए और कोई चीज हमारे ध्यान में आए ना आए, किंतु यहां का जीवन अच्छा रहे, हमारे सबसे संबंध अच्छे रहे, किसी के प्रति ईर्ष्या न हो, किसी के प्रति गुस्सा न हो, ये सब होता रहे तो ये महान कार्य है। और ये जब ही होता है कि जब आप भगवान को समझ लो, और खाली भगवान के ज्ञान नहीं होता है कि तो हमारा और भगवान का क्या संबंध है, ये समझने से ये बातें हमें समझ में आ जाती है। और भागवतम में कहा है बड़ा स्पष्ट, प्रभुपाद जी हमेशा लिखते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये रामदास है और ये कृष्णदास, इतना आप समझ जाएं कि मैं या यदि रामदास हूं या कृष्णदास हूं, ये दास हूं इसकी जब कल्पना आ जाती है तो देन ये सब बातें अच्छी हो जाती है और ये जलन हमारे शरीर से निकल जाती है। और ये जब निकल जाए तो धीरे धीरे राम जी की तरफ ज्यादा तेजी से हम भागते हैं, राम को समझते हैं, लक्ष्मण को समझते हैं, सीता जी को समझते हैं और अच्छे गुण हमारे में हमेशा आते हैं, क्योंकि हम मटेरियल चीजों के पीछे भागते नहीं है। एक बेचारा संत था, छोटा, बहुत साधु था और सिंपल था बेचारा, तो कोई गांव में जाकर रहा था, तो गांव में जाकर आप रहें तो वहां थोड़ी झोपड़ी भी हो जाती है, थोड़ा कंपाउंड को आपको मिल जाए, जमीन भी मिल जाती है, तो वहां बेचारे आश्रम करके रहता था। और इसके बाद लोगों ने एक बड़ा अच्छा घोड़ा दिया था कि भाई हमारे को नहीं, अभी स्कूटर देते हैं, बाइसाइकिल देते हैं या गाड़ी देते हैं घूमने के लिए, तो वैसे पहले घोड़े देते थे, तो बहुत अच्छा घोड़ा था। ये बेचारा घूमने के लिए घोड़े पर निकलता था बाहर। एक आदमी इसकी ईर्ष्या करने लगा कि संत को घोड़े की क्या आवश्यकता है, इसको घोड़ा कहेगा जो मुझे चाहिए घोड़ा। और ये बच्चा अच्छा घोड़े सवार था, अच्छी सवारी कर सकता था घोड़े की, तो इसने क्या किया कि कैसा लिया जाए इसे पास घोड़ा। तो रास्ते के बाजू में एक दिन ऐसे लंगड़ा पड़ा है, ऐसे इसने डोंग कर लिया, बाप जी करते पड़ा था। तो ये संत वहां से गुजरता था, तो बोले बाप जी मैं बिल्कुल उठ नहीं सकता हूं, आप घोड़े वाले हो तो मुझे घोड़े पर बिठा के दूसरे गांव में ले जाइए, मुझे वहां जाना है। तो संत को दया आई, ना दया सर्वभूतेषु संतुष्ट है न के नवा सर्वेन्द्रियु प्रशांत्या तृष्यत्याशु जनार्दन। ये श्लोक है भागवतम में कि तीन चीजें तृष्यति सेटिस्फाइड जनार्दन इमीजिएटली, जल्दी भगवान को राजी करना हो तो ये तीन बातें करनी चाहिए कि पहली तो दया सभी जीवों पर, इसलिए हमने मांस खाना बंद कर दिया है, मछली खाना हमने बंद कर दिया है और अंडे खाना भी हमने बंद कर दिया, ये दया का कारण है। और जो भी जीव हमारे संबंध में आते हैं, जो भी हो सके वैसी हम इन पर दया करते हैं, और कुछ हो ना हो किसको हम तकलीफ नहीं देते, ये नॉन वायलेंस। फिर दया सर्वभूतेषु संतुष्ट है न केनवा, और कोई भी बात में हम संतोष मानते हैं। और सर्वेंद्रियेषु प्रशांत्या, हमारे सब इंद्रिय जो हैं वो हमारे कंट्रोल में, वो कहीं यहां वहां जाते नहीं, हमारी आंख हमारे कंट्रोल में है, हमारे कान हमारे कंट्रोल में है, हम कुछ नहीं करते, जो कृष्ण जी ने राम जी ने बताया है वही हम करते रहते हैं। ये तीन बातें जो करता है वो जनार्दन को जल्दी सेटिस्फाई करता है। और तीन बातें याद रखने के लिए बहुत अच्छी तरकीब है कि दया को अंग्रेजी में मर्सी कहते हैं, तो मर्सी का एम निकाल लीजिए। फिर कोई भी परिस्थिति में संतोष रखना तो संतोष को सेटिस्फेक्शन कहते हैं, तो उसका एस निकाल लीजिए, एम एस, और कंट्रोल की सी, हमारे कंट्रोल में चाहिए सब इंद्रियां हमारे कंट्रोल, एम एस सी, ये डिग्री मास्टर ऑफ साइंस। तो ये डिग्री आप मिला लो तो भगवान राजी हो जाए। प्लीज याद रखें हमेशा कि हमारे काम ये एमएससी के भीतर है या नहीं, इतना याद रखें तो भगवान राजी हो जाए हमारे से। तो ये बेचारा साधु दया करने लगा और उसने उठाकर धीरे से इसको घोड़े पर बिठा और खुद भी बैठकर चलने लगा। पर ये तो बड़ा अच्छा घोड़ेसवार, वो ऊपर बैठे ही सीधा हो गया हो और साधु को धक्का मार दिया, नहीं साधु नीचे गिर पड़ा और ये घोड़ा लेके भागने लगा। साधु बेचारे इसके पीछे भागने लगा और कहने लगा कि तू फिक्र मत कर, घोड़ा तेरा है तू जरा खड़े रहे, घोड़ा तेरा है तू खड़े रहे। तो ये दूर से सुनता था ये कि भाई घोड़ा तेरा है तू फिक्र मत कर मगर तू खड़े रहे, तो भरोसा था साधु पर उसका। तो चलो बोले घोड़ा तो मिल गया है अब देखें साधु क्या बोलता है, तो ऐसे खड़े रह गया वो। तो साधु इसके पास गए, देख बोले तूने मेरे को धोखा देकर घोड़ा लिया है, पर ये बात किसी को नहीं कहना, कि तूने कैसे यह घोड़ा प्राप्त किया। तो इसने पूछा क्यों, उसमें क्या क्या हर्ज है? नहीं बोले दूसरे को तू कहेगा तो दूसरी बार कोई लंगड़े को कोई घोड़े वाला मदद नहीं करेगा, सहाय नहीं करेगा। देखिए ये साधु की निशानी, ये पर दुख कितना दूर का सोचा होगा उसने कि ये आदमी किसी को कहेगा तो आगे कोई सचमुच लंगड़ा हो तो उसको कोई घोड़े पे बिठाकर और सहाय नहीं करेगा। ये साधु के लक्षण प्लीज। और इसमें शांति, इसमें हमारे को बड़ा आराम, ये काम जो हम करते हैं ऐसा, इसमें हमारी तबीयत ना बिगड़नी नहीं चाहिए। फिर तो तबीयत का काम तो भगवान के हाथ में है। चराचर शब्द मैया दक्षिण प्रकृति सुयत है चराचरम, किंतु हमारे से जितना भी हो सके उतना हमने ये पालन करना है, इसका नाम भक्ति है। और रोज के जो काम है वो बिल्कुल निश्चित अच्छी तरह से करते हैं हम, बहुत ऑनेस्टली। हमारे से जितना भला होता है लोगों का उतना भला हम करते रहे। और जब काम करने वाला प्रामाणिकता से काम करता है, आपका खुद का बिजनेस या कुछ भी हो, और जब ये भावना से काम होता है तो इसको अखूट इंटेलिजेंस बुद्धि और शक्ति प्राप्त होती रहती है। हम काम चोर हो तो भगवान भी शक्ति चोर लेता है, ये शक्ति देता नहीं है हमें। काम चोर हो तो हर एक बाजू से हमारे को तकलीफ होती है। तो ऐसा न करें और हमारी बर्बादी रावण या दुर्योधन या जरासंध या शिशुपाल के जैसी न हो जाए, इसका ख्याल हम रखें। ये हम रावण ये राम जी के जीवन से सीखें तो हमारा कल्याण हो जाए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय। रघुपति राघव जारा हित पावन हितारा, सीताराम ताराम भज प्यारे तू हितारा, सीताराम ताराम भज प्यारे सीताराम, रघुपति राघव जाराम हित पावन ताराम, रघुपति जाराम पावन रघुपति राघव जाराम पीत अवन हितारम, सीताराम ताराम भज प्यारे सीताराम, सीताराम ताराम भज प्यारे सीताराम, श्री राम राम रण कर्कश राम 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 रण कर्कश राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, सीता राम राम राजा राम राम, सीता राम राम राजा राम राम, राजा राम राम सीता राम राम, राजा राम राम सीता राम राम, सीता राम राम राजा राम राम, सीता राम राम राजा राम राम, राजा राम राम सीता राम राम, राजा राम राम सीता राम राम, रघुपति राघव जाराम तीत पावन ताराम, रघु रघुपति राघव जाराम तीत पावन ताराम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद की।